अभी तक जितनी भी बातें बताई गई, आपको लग रहा होगा कि इसका जो है ना शाब्द बोध पर क्या असर बने होगा और किस टाइप का शाब्द बोध होगा, तो उस बात को अब यहाँ पर पाठ में बताया जाएगा। और ये जो कारिका थी फल व्यापार यो धातु वाली, इस कारिका के व्याख्यान का आज उपसंहार होना है। इसके बाद सेकंड कारिका का पाठ शुरू होगा। तो कहते हैं ग्रंथ में इत्थं च, माने इस तरह से का तात्पर्य ये है कि तिंगर्थ विशेषण होता है और धात्वर्थ व्यापार जो है वह मुख्य विशेष्य होता है। संख्या जो है कर्तृवाच्य में कर्ता में विशेषण है और कर्मवाच्य में कर्म में विशेषण है। तिंग का अर्थ आश्रय होता है, धातु का अर्थ जो है फल और व्यापार है। अब फल का व्यापार में जो अन्वय होता है ना, वो अनुकूलत्व संबंध से अन्वय होता है। अनुकूलत्व मतलब होता है जनकत्व। ऐसा है कि धातु का अर्थ है फल और व्यापार, तो इसमें एक जन्य है दूसरा जनक है। जन्य माने समझते हैं ना उत्पन्न होने वाला, और जनक माने उत्पन्न करने वाला। तो आप बताइए कि फल और व्यापार में कौन जन्य है कौन जनक है। ये क्लियर है कि व्यापार जनक होगा और उससे जन्य होगा फल, क्योंकि जब व्यापार करेंगे क्रिया करेंगे तभी तो फल की उत्पत्ति होगी। तो फल जो होता है वह जन्य होता है और व्यापार जो है वह जनक होता है। तो फल का अन्वय जो हम करेंगे व्यापार में, माने फल पदार्थ का जो संबंध स्थापित करेंगे व्यापार पदार्थ में, वो कौन सा संबंध होगा, तो वो अनुकूलत्व संबंध होगा। अनुकूलत्व और जनकत्व एक ही बात है। तो जैसे मान लीजिए कि पचति है, तो पचति का पचति में जो पच धातु है उसका अर्थ हो गया पाक और भावना। व्यापार और भावना एक ही चीज है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो पाक और भावना ये दो अर्थ हो गए, पाक है फल और भावना है व्यापार। अब पाक पदार्थ का अन्वय करेंगे भावना पदार्थ में अनुकूलत्व संबंध से, तो शब्द तो वाक्य कैसा बन जाएगा, पाकानुकूला भावना, पाक अनुकूला भावना। आप इसको पाक जनिका भावना भी समझ सकते हैं, माने पाक का जनक भावना। तो ये सब जितनी भी बातें पीछे आई हैं, धात्वर्थ को बताया गया, तिंगर्थ को बताया गया, विशेष विशेषण भाव को बताया गया, इन सब बातों को जानने के बाद आपके मन में जिज्ञासा होगी कि पचति यह जो तिंगंत पद है इसका शाब्द बोध कैसा बनेगा। तो इसमें आप थोड़ा सा रुक जाइए, पचति में देखिए कि क्या क्या है। दो पद है, एक है पच दूसरा है ती। पच क्या है, धातु है। ती क्या है, विभक्ति है, प्रत्यय है। तो पच धातु का अर्थ हो गया फल और व्यापार, तो दो अर्थ यहाँ है। और ती जो प्रत्यय है उसके तीन अर्थ होंगे, क्योंकि कर्तृवाच्य में यह है ना, एक तो कर्ता अर्थ होगा, दूसरा एकत्व संख्या अर्थ होगा और तीसरा वर्तमान काल ये अर्थ होगा। तो कुल मिलाकर के पांच अर्थ हो गए। पद दो हैं पचति में, एक है पच पद दूसरा है ती पद। तो पच पद के दो अर्थ हैं फल और व्यापार, और ती पद के तीन अर्थ हैं कर्ता संख्या और काल। अब ये जो पांच अर्थ हैं, इन पांचों अर्थों को परस्पर विशिष्ट विशेषण भाव में बना करके और फिर जो बोध किया जाएगा, जो ज्ञान होगा वही है शाब्द बोध। तो वह शाब्द बोध कैसा होगा पचति का, वो ग्रंथकार बता रहे हैं कि पचति इत्यत्र एकाश्रयिका पाकानुकूला भावना, ये शाब्द बोध बनेगा। माने पचति शब्द को जब हम सुनते हैं तो उससे बोध कैसा होता है, इस तरह का बोध होता है कि एकाश्रयिका पाकानुकूला भावना। अब इस शाब्द बोध को थोड़ा समझिए, इन्होंने क्या किया है, एक आश्रयिका लिखा है। इसमें आश्रय अर्थ किसका है, तिंग का अर्थ है, क्योंकि आपको याद होगा ना आश्रय तो तिंग स्मृता है, तो तिंग का अर्थ होता है आश्रय। और तिंग का जो भी अर्थ होगा उसी में संख्या जो है विशेषण बन जाएगा, इसलिए एक जो है आश्रय में लग गया तो एक आश्रय हो गया। और यह जो आश्रय है तिंग का अर्थ आश्रय, वह किसमें विशेषण होगा? तो व्यापार मुख्य विशेषक शब्द बोध होता है वैयाकरण के मत में ना, भावना मुख्य विशेषक शब्द बोध, तो भावना में विशेषण बनेगा, इसलिए इन्होंने यहाँ लिखा एक आश्रय का। इसका मतलब हुआ एक आश्रय बाली, वो बाली कौन है? तो भावना है। तो देखा ना आपने, भावना का ये विशेषण हो गया। तो एकाश्रयी का समझ में आया। अब है पाकानुकूला भावना। अब पच धातु जो है उसके दो अर्थ हैं, फल और व्यापार। तो फल यहाँ पर क्या है? पाक है, वही पाक मतलब विकलित्ति, तो पाक है। और भावना जो है व्यापार है, उसमें अनुकूलत्व संबंध से अन्वय होगा, जो आज पाठ के शुरू में मैंने बताया था। तो पाकानुकूला भावना ये अर्थ होगा पच धातु का। तो पच धातु का अर्थ हो गया पाकानुकूला भावना, और ती का अर्थ हो गया एकाश्रयी का। एकाश्रयी का जो है यह विशेषण वाला भाग है, और पाकानुकूला भावना जो है यह विशेष्य वाला भाग है। इस तरह से पचति का शब्द बोध बना एकाश्रयी का पाकानुकूला भावना। क्लियर? अब आप जानते हैं, मैंने समझाया हुआ था कि कर्म वाच्य में संख्या जो है किसका विशेषण बनता है? कर्म का विशेषण बनता है। तो आपको मैं यहाँ बताऊं कि एक चीज ये जान लीजिए कि पच्यते में जो शब्द बोध आगे बताया है और पचति का जो शब्द बोध बताया है, दोनों में आश्रय लिखा गया है। देखिए, पचति इत्यत्र एकाश्रयी का पाकानुकूला भावना, यहाँ आश्रय बताया ना एकाश्रयी का, और पच्यते में जो शब्द बोध बताया जा रहा है उसमें भी कहा था है कि एकाश्रया या विकलित्ति ही तदनुकूला भावना, उसमें भी आश्रय कहा गया। लेकिन पचति वाले आश्रय का अर्थ क्या होगा? कर्ता। और यहाँ का जो पच्यते वाला जो आश्रय है, इसका अर्थ होगा कर्म। ये ध्यान में रखना है। कर्ता और कर्म को हम आश्रय पद से ही कह सकते हैं, क्योंकि कर्ता जो होता है वो व्यापार का आश्रय होता है, और कर्म जो होता है वह फल का आश्रय होता है। लेकिन आश्रय तो दोनों है, तो आश्रय शब्द से कहने में क्या होता है कि लाघव होता है, माने कम बोझा पड़ता है। एक ही शब्द से दोनों अर्थों को हम बता पाते हैं। तो पचति का तो शब्द बोध बताया इन्होंने एकाश्रयी का पाकानुकूला भावना। अब पच्यते का जो शब्द बोध होगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, केवल जो है बदल किया जाएगा कि संख्या का अन्वय इसमें कर्म रूप आश्रय में होगा। पचति में किसमें अन्वय हुआ था? कर्ता रूप आश्रय में विशेषण बना था संख्या, यहाँ पर कर्म रूप आश्रय में विशेषण बनेगा। तो इन्होंने साधु बताया पच्यते इत्यत्र एकाश्रया या विकलित्ति तदनुकूला भावना, माने एक है आश्रय माने कर्म, जिसमें किसमें या विकलित्ति रूपी फल में, ठीक है। तो एक है आश्रय जिसमें माने विकलित्ति में, विकलित्ति रूपी जो फल है उसका आश्रय कौन होगा? कर्म होगा। तो वही कहा कि एकाश्रया या विकलित्ति माने एक आश्रय वाली जो विकलित्ति, उसके अनुकूल जो भावना है वही हो गया एकाश्रया या विकलित्ति तदनुकूला भावना। ये शब्द बोध होता है पच्यते से। अगर इसको आप ये या और सा सबको हटा दें तो इस तरह से कह सकते हैं कि एकाश्रय विकलित्य अनुकूला भावना, और विकलित्ति के बदले अगर हम पाक रख लें तो कुल मिलाकर के वैसा ही बन जाएगा कि एकाश्रय विकलित्य अनुकूला भावना, पाकानुकूला भावना। अब एक चीज और यहाँ पर आपको समझना है कि इसमें जो एकाश्रय है, आश्रय जो है ना विशेषण, वो विकलित्ति का है माने पाक का है, फल का विशेषण। और पचति में जो आश्रय विशेषण था ना, वो भावना में था, व्यापार में विशेषण था, क्योंकि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में ये अंतर होता है। तो कर्तृवाच्य में आश्रय किसका विशेषण? आश्रय का मतलब होता है कर्ता, तो कर्ता विशेषण बनेगा व्यापार में। और कर्मवाच्य में आश्रय का अर्थ होता है कर्म, तो कर्म विशेषण बनेगा फल में। क्यों? क्योंकि फलाश्रय कर्म होता है और व्यापार आश्रय कर्ता होता है। तो व्यापार आश्रय व्यापार में विशेषण बनेगा, और फलाश्रय जो कर्म है वह फल में विशेषण बनेगा। तो दो दो अंतर है पचति के शब्द बोध में और पच्यते के शब्द बोध में। मुख्य विशेष में कोई अंतर नहीं है, वहाँ भी भावना लास्ट में कहा गया है, यहाँ भी भावना लास्ट में कहा गया है। तो अंतर केवल दो ही हैं। एक अंतर ये है कि संख्या का अन्वय कर्तृवाच्य में जो है कर्ता में होता है और कर्मवाच्य में कर्म में होता है। दूसरा अंतर ये है कि आश्रय रूप जो कर्ता है वह कर्तृवाच्य में व्यापार का विशेषण बनता है और कर्मवाच्य में आश्रय रूप जो कर्म है वह फल में विशेषण बनता है। इतना अंतर है, लेकिन मुख्य विशेष में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से पचति का शाब्द बोध हो गया एकाश्रयी का पाकानुकूला भावना, और पचते का शाब्द बोध हो गया एकाश्रया विकलिति तदनुकूला भावना। इस तरह से यहाँ पर पचति और पचते का शाब्द बोध जो है आपको बताया गया। अब आगे कहते हैं कि देवदत्तादि पद प्रयोग, यहाँ तो केवल पचति और पचते बताया गया है ना, लेकिन इसमें अगर हम देवदत्त का प्रयोग कर लें, जैसे पचति में देवदत्त लगाएंगे तो देवदत्त पचति, और पच्यते में लगाएंगे तो देवदत्तेन पच्यते, कर्मवाच्य में कर्ता से तृतीया हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि देवदत्तादि पद प्रयोगे, देवदत्त आदि कर्ता कर्म सबका जब हम अलग से प्रयोग करेंगे वाक्य में, तो आख्यातार्थ कर्तादि भी, आख्यात माने तिंग, तिंग प्रत्यय का जो अर्थ है कर्ता और कर्म, उसके साथ देवदत्त आदि का क्या होगा, अभेदान्वय होगा। अब जैसे देवदत्त पचति अगर कहते हैं तो देवदत्त का अर्थ हुआ देवदत्त, और इधर आश्रय अर्थ हुआ तिंग का, तो उसमें अभेदान्वय होगा। अभेदान्वय होने से ना अभिन्न शब्द जुड़ जाता है, तो क्या होगा, देवदत्त में अभिन्न जोड़ दीजिए तो क्या होगा, देवदत्ताभिन्न आश्रय, ऐसा जो है शब्द बोध होगा। इसी तरह से पच्यते में भी अगर देवदत्तेन पच्यते होगा तो वहां पर भी देवदत्ता भिन्नाश्रय, इस तरह से शब्द बोध होगा। मैं आपको देवदत्ता तंडुलम पचति, इसका क्या पूरे का शब्द बोध होगा, क्योंकि इसमें कर्ता है देवदत्ता, कर्म है तंडुलम, आतिगंत है पचति, और कर्मवाच्य में भी देवदत्तेन तंडुल पच्यते, इसमें भी कर्ता कर्म का प्रयोग हुआ है, तो इसका शब्द बोध क्या होगा वो मैं आपको होगा तो पाठ के लास्ट में लिखा दूंगा और उसको याद करना है। तो पुस्तक में आपको पचति और पचते का शब्द बोध बताया और एक तरीका बताया कि देवदत्त आदि जब कर्ता कर्म का प्रयोग हो उसमें तिंगर्थ के साथ कर्ता कर्म के साथ उसका अभेदान्वय करके शब्द बोध होता है। फिर आया कि घटो नश्यति का शब्द बोध क्या होगा, तो कहा कि घटो नश्यति इत्यत्र घट अभिन्न आश्रय कह नासानुकूलो व्यापार इति बोधा, बोधा माने शब्द बोधा। तो नश्यति का, नश्यति में कौन सी धातु है, नस धातु है, तो नस धातु का भी दो अर्थ होगा, फल और व्यापार। फल कौन है, नाश है, और व्यापार है, तो फल का अनुकूलत्व संबंध से व्यापार में अन्वय होगा, तो नाशानुकूलो व्यापार यह नस धातु का अर्थ हुआ, ठीक है। और नश्यति में जो ती है, ती का अर्थ हुआ आश्रय, और उस आश्रय में घटह जो करता है उसका अभेद संबंध से अन्वय होगा। मैंने बताया था कि घट का कि अभेद संबंध से अन्वय होता है तो अभिन्न शब्द जुड़ जाता है, तो घट में अभिन्न जोड़ दीजिए तो घट अभिन्न दीर्घ करके क्या होगा, घटाभिन्न, तो घटाभिन्न के आगे आश्रय है फिर दीर्घ हो जाएगा घटाभिन्नाश्रय, और ये विशेषण किसमें बनेगा, व्यापार में। तो पुल्लिंग हो तो कह लगाते हैं और स्त्रीलिंग हो तो का लगाते हैं, तो यहाँ पर घटा भिन्नाश्रय कह नाशानुकूलो व्यापार यह शब्द बोध होगा, किसका, घटो नश्यति का। आगे कहते हैं कि सच व्यापार कहा कि नाशानुकूल जो व्यापार होता है माने अनुकूल माने जनक, नाश का जनक जो व्यापार होगा वो किस टाइप का होगा, कहते हैं कि सच व्यापार वह जो नाशानुकूल व्यापार है वह होगा प्रतियोगित्व विशिष्ट नाश सामग्री समवधानम, माने नाश करने की जो सामग्री होती है, जैसे मान लीजिए घड़ा है तो घड़ा को नाश करने की सामग्री क्या होगी, दंडा, क्योंकि दंडा मारेंगे तो घड़ा का नाश हो जाएगा, और समवधानम का मतलब होता है एक साथ रहना, तो नाश सामग्री का एक साथ रहना जो है वही यहाँ पर नाशानुकूल व्यापार है। इसमें एक शब्द इन्होंने लगाया प्रतियोगित्व विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब होता है युक्त, तो प्रतियोगित्व से युक्त जो नाश सामग्री का समवधान है माने एकत्रित होना है वही हुआ व्यापार। आप कहेंगे कि ये प्रतियोगित्व क्या है, तो ऐसा है कि जिसका नाश होता है उसको हम प्रतियोगी कहते हैं, जैसे मान लीजिए घट का नाश होता है तो नाश का प्रतियोगी कौन कहलाएगा, घट कहलाएगा। अच्छा प्रतियोगी में कौन सा धर्म होगा, प्रतियोगित्व धर्म होगा। मैंने इसके बारे में बताया हुआ है आपको कि गुरु में गुरुत्व धर्म रहता है, गो में गोत्व धर्म रहता है, तो प्रतियोगी में कौन सा धर्म रहेगा, प्रतियोगित्व धर्म रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, यस्याभाव सब प्रतियोगी, मान जिसका अभाव होता है, जिसका नाश होता है वह प्रतियोगी कहलाता है। तो घटो नश्यति में किसका नाश हो रहा है, घट का नाश हो रहा है, तो घट जो है यहाँ पर प्रतियोगी कहलाएगा, प्रतियोगी में रहने वाला धर्म प्रतियोगित्व कहलाएगा, और उस प्रतियोगित्व से विशिष्ट जो नाश की सामग्री है दंड आदि, उसका जो समवधान है माने एकत्रित होना है, वही यहाँ पर नाशानुकूल व्यापार है। अतएव इसीलिए तस्याम सत्याम माने नाश सामग्र्याम सत्याम, नाश सामग्री के रहने पर नश्यति प्रयोग होता है, तत अत्यये माने नाश सामग्री के बीच माने भूतकालिक रहने पर नष्टः प्रयोग होता है, और तद भावित्ये माने नाश सामग्री के भविष्य में होने पर नंक्ष्यति, ये लिट लकार का प्रयोग होता है। ऐसे ही देवदत्तो जानाति, देवदत्तः इच्छति इत्यादो, इस तरह के वाक्यों में किस तरह का शब्द बोध होगा, तो लिखते हैं कि देवदत्त अभिन्न आश्रय कह ज्ञानानुकूलो वर्तमान कालिको व्यापार, ये होगा देवदत्तो जानाति का। जानाति में ज्ञा धातु है ना, ज्ञा धातु का अर्थ होगा ज्ञानानुकूल व्यापार, ज्ञान है फल और फल का अन्वय अनुकूलत्व संबंध से व्यापार में होगा, तो ज्ञा धातु का अर्थ हो गया ज्ञानानुकूल व्यापार, और जानाति में जो ती है उसका अर्थ हुआ आश्रय, उसमें अभेदान्वय होगा देवदत्त का, तो देवदत्ता भिन्नाश्रय कह ज्ञानानुकूलो व्यापार, यह देवदत्तो जानाति का शब्द बोध होगा। आ देवदत्ता इच्छति रहेगा, तो इच्छति में इशु धातु है, उसका अर्थ होगा इच्छानुकूल व्यापार, तो इसमें शब्द बोध क्या बनेगा, तो देवदत्ता भिन्नाश्रय कह इच्छानुकूलो वर्तमान कालिको व्यापार, काल का अन्वय व्यापार में करते हैं ना, तो सच अंततः आश्रयते व आश्रयता एव इति रीत्या उज्यम, और वह जो व्यापार है वह लास्ट में जाकर के फाइनली जो है आश्रयता के रूप में ही व्यापार जो है वह होता है। इस तरह से यहाँ का पाठ जो है आज संपन्न होता है। मैं शब्दबोध आपको नहीं लिखा पाया, अब अगले पाठ में आपको पहले मैं शब्दबोध लिखाऊंगा, फिर अगली कारिका जो तीसरे नंबर की कारिका है उसका पाठ में पढ़ाऊंगा। आज का पाठ यहीं रखा।